हरे कृष्ण
जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ Thank you. श्रीमद् श्रीमान बेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद के जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य स्तोत्र शतश्रु श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की नामाचार्य हरिदास ठाकुर के अनंत कोटि वैष्णव वृंद की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गौर गोपिका श्याम कुंड राधा कुंडगिरि गौरनाथ की वृंदावन मथुर धाम की नवदीप मायापुर धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की भक्ति देवी तुलसी देवी की गंगा मय यमुना मय की श्री श्री राधा गोविंद देव की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की श्री श्री पंच तत्व की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की समवेत गौर भक्त वृंद की नितार गौर प्रेमानंदे ऑल गुरिस्टो सेंट्रल डिवोटीज ऑल गुरिस्टो सेंट्रल डिवोटीज ऑल गुरिस्टो सेंट्रल डिवोटीज ऑल गुरिस्टो श्री गुरु एंड गौर नंदा तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 9 स्कंद 2 अध्याय 9 और श्लोक संख्या 33 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी ग्रंथराश्रीमद्भागवतम स्कंद 2 अध्याय 9 श्लोक संख्या 33 अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् यत् सत् असत् परां पश्चादहं यदेतश्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम् अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत् परम् पश्चात् अहम् यदेतश्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम् अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत् परम् पश्चादहं यदेतश्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम् अहमेवासमेवाग्रे श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् यत् सत् असत् परं पश्चात् अहम् यदेतश्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम् तो ये जो अध्याय है श्री भगवान के वचन का उद्धरण देते हुए प्रश्नों के उत्तर तो हम श्रवण करते आए हैं कि ब्रह्मा से जो भगवान क्या करते हैं हाथ मिलाते हैं और भगवान इसलिए हाथ मिलाते हैं क्योंकि वास्तव में ब्रह्मा जी की जो सरलता है उससे भगवान बहुत प्रभावित होते हैं। सरलता का मतलब है कपटता से रहित होना, सरलता का मतलब है जो कहा जाए बिना किसी आप हिचकिचाहट के, बिना किसी आपने स्वार्थ के, बिना किसी स्वयं के मतलब के करना। तो ये ब्रह्मा तप करने के लिए बोला तो बिल्कुल कुछ और सोचा नहीं कि मुझे कुछ और चीजें भी करनी है, उन्होंने तप करना शुरू किया। जो भगवान ने कहा वही उन्होंने अपने जीवन में धारण किया और भगवान इतने प्रभावित हो गए ब्रह्मा से और उनकी तपस्या से, उनकी सरलता से, उनके सेवा करने की जो मनोवृत्ति है, तो भगवान प्रकट हुए उनके सामने। और भगवान ने तो सर्वप्रथम अपना वैकुंठ जगत को दिखाया। जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा कि जगत में लोग भगवान को देखना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में जो भक्त है वो भगवान को देखना नहीं चाहता है ना, भगवान की सेवा में सदैव नियुक्त रहना चाहता है। तो भगवान को देखने की कामना मत करो, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं, देखने की कामना करो लेकिन उनको देखने का प्रयास मत करो, बल्कि ऐसा कार्य करो कि भगवान आपको देखे। तो ये चीज ध्रुव महाराज के जीवन में भी हम देखते हैं। ध्रुव महाराज ने भी इस प्रकार का आचरण किया था, जैसे नारद मुनि ने कहा वैसे ध्रुव महाराज ने आचरण किया। जिन्होंने कहा कि मैं, मुझे तो अपने पिता से भी बढ़कर राजत्व चाहिए, नारद मिले बीच में, पहले तो बहुत सारे ऋषि मिले थे ध्रुव को, फिर नारद मिले और नारद ने कहा देखो ये करना होगा, मधुवन में जाओ मथुरा के पास और वहां यमुना के किनारे तपश्चर्या करो और भगवान का विग्रह बनाओ मिट्टी से या जो यमुना की रेत है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस नाम का जप करो। तो इतना केवल इतने ही जो आज्ञाएं उनको मिले थे, वो गंभीर थे, स्थिर थे, सरल थे, वैसे बच्चे थे तो सरलता थे, उन्होंने कुछ संशय नहीं किया कि ये नारद जो बोल रहे हैं इसे होगा या नहीं होगा, हमें डाउट रहता है। जैसे ही भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति जो प्रोसेस है भगवान को प्राप्त करने की, शास्त्रों के प्रति, इसके प्रति जब संशय आने लगते हैं तो उस भक्त का जीवन, आध्यात्मिक जीवन खत्म होने लगता है। इसलिए गीता में कृष्ण कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति। संशयों को दूर करने के लिए आध्यात्मिक गुरु है। हम जब बिना श्रद्धा के भगवत भक्ति करने का प्रयास करते हैं तो हम उन्नति नहीं कर पाते। तो ध्रुव महाराज तो गए थे बड़ा राज्य प्राप्त करने के लिए, वो भगवान को प्राप्ति उनके जीवन का लक्ष्य नहीं था, बल्कि इस श्लोक का सार क्या है, प्रभुपाद आखिरी लाइन में कहते हैं इस श्लोक का यही शिक्षा है कि भगवान की जो प्राप्ति है वो हमारे जीवन का लक्ष्य है और भगवान जो कृष्ण है मूल, उनको स्वीकार करना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो ये जो ध्रुव है वो गए थे भौतिक आसक्ति को लेकर। तो ध्रुव महाराज जब देखा, उन्होंने इतना कठोर तपस्या की भगवत प्राप्ति के लिए, और हम सोचते कि भगवत प्राप्ति, भगवान को प्राप्त करना बहुत सरल है, हम प्रवचन में बोल देते हैं, हम दूसरों को बोलने में बहुत अच्छा लगता है कि कलयुग केवल नाम आधारा, लेकिन खुद का नाम नहीं होता, खुद के नाम का जप होता है लेकिन भगवान के नाम का जप हमसे नहीं होता, भगवान की कथा को सुनने में हमारी रुचि नहीं है, भगवान की सेवा करने में हमारी रुचि नहीं है, हाँ साधु गुरु शास्त्र के प्रति हमारी कोई आसक्ति नहीं है। तो ऐसे जो ध्रुव जब तपस्या कर रहे थे, फिर भगवान प्रकट हो जाते हैं उनके उस कार्य को देखकर। वो आते भगवान गरुड़ा के ऊपर, वो आके हाथ तो नहीं मिलाते, लेकिन क्या करते हैं, आते ही जब ध्रुवा ने देखा कि अरे वो आंखें बंद थी, जैसे खोला उन्होंने क्या देखा, परम भगवान जो उनके सामने थे, परम भगवान को उन्होंने देखा। तो वास्तव में शास्त्र कहते हैं कि जो महान भक्त है वो चाहे अपने आंखें बंद करे या खोले, वो सदैव किसको देखता है, कृष्ण को देखता है। हम आंखें खोले हो या बंद हो, हम सदैव माया का दर्शन करते हैं, नहीं? तो इसलिए आचार्य अगर कहते हैं जदि नयन मुदे थाके अंतरे गोविंद देखी, जदि नयन मुदे थाके अंतरे गोविंद देखी, नयन खुली देखी शामे। आचार्य कहते हैं कि यदि जो भक्त है अपनी आंखों को बंद करता है, अंतरे गोविंद देखी, गोविंद को, कृष्ण को देखता है, तो हमारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, क्योंकि उनके हृदय में भगवान कृष्ण निवास कर रहे हैं। और आंखें खोलते भी है, खुली देखी ले शामे, भगवान को देखते हैं। तो ध्रुव महाराज ने अपनी आंखें खुली दिखा रहे, चतुर्भुज कृष्ण उनके सामने नारायण खड़े हैं, गरुड़ा के ऊपर आ गए, उनकी चुप्पी बंद हो गए। अभी क्या बोलूं मैं, उनको देखकर कुछ स्फुरित नहीं हो रहा है, जैसे कोई बड़ा व्यक्ति आ जाए अचानक। हम बिल्कुल पहले सोचते कि बहुत कुछ बोलेंगे, जैसे महाराज वगैरह को मिलने जाते हैं तो लगता है कि मैं ये बोलूंगा, वो बोलूंगा, वो कंप्लेन करूंगा, लेकिन जाते हैं तो आवाज ही नहीं निकलती, सारी संशय खत्म हो जाते हैं। तो वैसे ही भगवान को देखकर ध्रुव ने देखा तो कुछ निकल ही नहीं रहा है मेरे मुंह से। जैसे कहते ना कि भगवान प्रकट हो जाए तो आप करोगे क्या, हम कहते ना भगवान प्राप्त करना है, भगवान आ भी जाए अभी अंदर घुसे तो हम कर क्या सकते हैं, यदि हम प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है, हमने अच्छी तरह से ट्रेनिंग और एजुकेशन नहीं किया है भक्ति का, तो भगवान हमारे सामने से आएंगे और गुजर भी चले जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा करना क्या है मुझे। तो जबकि ध्रुव महाराज ने खोला आके तो देखा भी भगवान सामने, मुझे करना क्या है। तो भगवान ने क्या किया, उनकी सरलता को देखा और शंख उनके सर में स्पर्श किया, क्योंकि शंख ज्ञान का प्रतीक है। शंख का, शंख और जो कमल है वो भक्तों के लिए है, और गदा और चक्र भगवान के पास आसुरों के लिए। वैसे देखा जाए ये चारों चीजें भक्तों के लिए है, चारों दो तो संरक्षण करते हैं भक्त के, और दो भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए। जैसे शंख का स्पर्श ध्रुव के सर में किया तो ध्रुव के मुख से कृष्ण का गुणगान निकलने लगा, और वास्तव में कृष्ण प्रेम, हम चाहते हैं कि मुझे कृष्ण प्राप्ति चाहिए। हम रोज गाते, हम थोड़ी कहते कि हमें कृष्ण को प्राप्त करना है, हमें किसको प्राप्त करना है, कृष्ण का जो प्रेम है उसको प्राप्त करना है। कृष्ण प्रेम में कृष्ण निहित है, और कृष्ण प्रेम वस्तु क्या है, कृष्ण प्रेम का मतलब ही है कि आपकी जीवा सदैव कृष्ण की गुणगान करते रहे, प्रशंसा करने की भावना एक भक्त के हृदय में आ जाती है, भगवान का, भक्तों का, धाम आदि का, तो वास्तव में वो कृष्ण प्रेम है, वही कृष्ण प्राप्ति है। तो भगवान स्वयं आ गए, तो इन्होंने सोचा क्या बोलूं, तो भगवान ने शंख जैसे स्पर्श किया तो बहुत सारी प्रार्थनाएं निकलने लगी, कृष्ण का गुणगान निकलने लगा। एक गुणगान में कहते हैं काचम दिव्यम, काचम विचिन्वन् अपि दिव्य रत्नम, कि हे कृष्ण मैं इतना मूर्ख हूं, काचम विचिन्वन्, मैं कांच के टुकड़े प्राप्ति करने के लिए घूम रहा था, और आपके पास आया हो तो आपकी प्राप्ति करने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो आया हूं कांच के टुकड़े लेने के लिए, जो भौतिक जगत का धन है, ऐश्वर्य है, स्त्री है, पुरुष है, मान है, सम्मान है, पोजीशन है, ये सब क्या है, कांच के टुकड़े की भांति है, इन भौतिक वस्तुओं के लिए मैं आपके चरणों में आया हूं, आपका भजन करने में लगा हूं, लेकिन वास्तव में मैं अभी जान गया हूं कि आप तो हीरा देने वाले हैं, हीरा देने वाले हैं, समर्थ है, और मैं कांच के टुकड़े मांग रहा हूं। तो इस प्रकार से भगवान देखते हैं जो सरलता और आदेशों का जब हम पालन करते हैं, तो भगवान को हमें ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, भगवान हमें ढूंढते हुए आ जाते हैं। कहते हैं ना, जो व्यक्ति श्रीमती राधिका का नाम उच्चारण करता है तो कृष्ण उस व्यक्ति के पीछे दौड़ने लगते हैं सुनने के लिए, भक्तों का नाम सुनने के लिए कृष्ण आनंद की अनुभूति करते हैं। तो इसी कारण से ब्रह्मा को भगवान हाथ मिलाते हैं। अभी ये नहीं कि भगवान का जीवन का परफेक्शन प्राप्त नहीं हुआ कि बस हो गया, अभी पूर्ति हो गई मेरे लाइफ की, अभी इसके बाद कोई सेवा नहीं, बल्कि उन्होंने कहा उसके बाद असली सेवा शुरू हो गई थी उनकी। जैसे हाथ मिलाया तो उन्होंने सबसे पहले प्रार्थना की कि हे कृष्णा, आप मुझे इतनी बड़ी सेवा दे रहे हो, इस सृष्टि का निर्माण करना है, इस सृष्टि में जो जीव आएंगे उनके लिए शरीर और ये संरचना करनी है, इतना बड़ा टास्क मेरे ऊपर है, और आप क्या करो, सबसे पहले तो मुझे ये सेवा करने का सामर्थ्य प्रदान करो, क्योंकि हम सबके पास माया का विरोध करने के लिए, माया को जीतने के लिए कोई एक अस्त्र है, तो वो अस्त्र क्या है? प्रार्थना है, प्रार्थना। और यदि व्यक्ति इस प्रार्थना रूपी अस्त्र को नहीं स्वीकार करता तो माया को विजय नहीं प्राप्त कर सकता, माया से माया के प्रभाव में, प्रभाव से बच नहीं सकता। इसलिए प्रार्थना बहुत आवश्यक है। प्रभुपाद जब लंदन में थे तो वहां प्रभुपाद आखिरी विजिट था लंदन का, बहुत बीमार थे, तो जब राधा गोकुलानंद या लंदनेश्वर के सामने खड़े हो गए और प्रभुपाद हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे, तो तमाल कृष्ण महाराज वो प्रभुपाद के साथ बहुत फ्रेंडली रहते थे, बहुत मित्रतापूर्ण अपने गुरु के साथ, तो आए प्रभुपाद के पास, प्रभुपाद क्या प्रार्थना कर रहे हैं? तो कहते हैं मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि हे कृष्णा, आप मुझे क्या करो, माया से बचाओ। प्रभु आश्चर्यचकित हो गए, तो प्रभुपाद आपको तो आपके जीवन में ऐसा एक भी क्षण नहीं था कि जिस क्षण आप कृष्ण को भूले हो। प्रभुपाद ने कहा एक प्रवचन में प्रभुपाद कहते थे कि मेरे जीवन में ऐसा कभी नहीं है, बचपन से अभी तक मैं एक क्षण के लिए कृष्ण को भूला, सदैव कृष्ण का स्मरण रखते। और यह नित्य सिद्ध भक्त का एक लक्षण है। नित्य सिद्ध भक्त कोई है तो उसका लक्षण क्या है? जीवन की शुरुआत से ही कृष्ण का स्मरण से वो भरा हुआ है। प्रभुपाद कहते हैं कि मेरे शिष्यों की एक कमी है, वो कभी माया से डरते नहीं है, तो कभी माया से डरते नहीं है, बल्कि माया से हमें क्या करना चाहिए? डरना चाहिए, भयभीत होना चाहिए, क्योंकि हम में बल नहीं है, हम अकेले हैं, एकाकी आमार नहीं पाए बल, हम अकेले में क्या शक्ति है, तो हमें कृष्ण की सहायता की आवश्यकता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्तिते, जो मेरे शरण ग्रहण करता है वो इस भौतिक माया को पार कर सकता है। तो इसलिए प्रार्थना ये हमें आचार्यों ने दी है, इतनी सारी प्रार्थना है, वैष्णव भजन क्या है, सारी प्रार्थना है, भागवत कुछ और नहीं है, भागवत में भक्तों ने की हुई भगवान के प्रति प्रार्थनाएं हैं। हर भागवतम के संग में कई सारी प्रार्थनाएं हैं। भागवत की शुरुआत में ही शुद्ध गोस्वामी में प्रार्थना कर रहे हैं, शुद्ध देव गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं, कुंती महारानी की सर्वप्रथम प्रार्थना है, फिर भीष्म की प्रार्थना है, फिर अलग अलग प्रार्थनाओं से भरा पड़ा है श्रीमद् भागवतम। तो ये प्रार्थना एक भक्त का धन है। तो ऐसे ब्रह्मा भगवान से प्रार्थना करते कि आप इतनी बड़ी सेवा तो दे रहे हो, हाँ, लेकिन आप क्या करो कि मुझे सामर्थ्य भी दो, शक्ति दो मुझे। हाँ, तो भक्तों को शक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, शक्ति दो कि आपकी मैं सेवा की पूर्ति कर पाओ, सेवा को पूरा कर पाओ, और दूसरा क्या कि मैं कभी विचलित ना हो अपने जीवन के लक्ष्य से। अभी हम जब इस्कॉन से जुड़ते हैं तो शुरुआत में पक्के रहते हैं, मेरे जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति करना। जब मंदिर में आ जाते हैं या रेगुलर आते हैं मंदिर, हाँ, धीरे 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 हम अपने जीवन का लक्ष्य भूल जाते हैं। पहले हम अर्जुन की तरह होते हैं, बाद में भीम की तरह, फिर दुर्योधन की तरह, फिर धृतराष्ट्र की तरह, पीछे पीछे आते हैं। हाँ, द्रोणाचार्य ने जब उनका परीक्षा लिया, हाँ, तो भीम अर्जुन को केवल वही दिख रहा था, क्या पंछी की आग, पक्षी की आग दिख रही थी। हम भी जब नए नए आते तो बाकी कुछ और नहीं दिखता, ना हमें गलतियां दिखती, ना कुछ दिखता, लगता कि वैकुंठ वातावरण है, और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवत की प्राप्ति करना, बस और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ चाहिए ना। लेकिन धीरे धीरे देखते हैं कि हम भीम होते जा रहे हैं, और भीम की तरह फिर हमें वो आग देना बंद, दिखना बंद शुरू हो जाती, फिर वो पूरा पंछी दिखाई देता है, फिर पेड़ भी दिखाई देता है, पेड़ के आसपास के लोग भी दिखाई देते हैं, फिर जीवन का लक्ष्य भूल जाते हैं। तो इसलिए हम क्या क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हम भक्तों के संग में रहते हुए भी भक्तों का संग नहीं करते। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा साधु संगे अनुक्षण, सदैव भक्तों का संग करेंगे तो भक्ति तीक्ष्ण होती जाती है। भक्ति में उन्नति होना डे बाय डे हमारे जो भक्ति है उसमें तीक्ष्णता आनी चाहिए, बहुत डीप हम जाते जाने चाहिए। जिस प्रकार से जो पेंसिल है वो शार्पनर का संग करती है तो क्या हो जाता है, और शार्प हो जाती है, धारदार हो जाती है। तो हम भक्तों के संग में है लेकिन भगवत भक्ति में हम तेज नहीं है, तीव्र नहीं है, तो समझना चाहिए कि मैं क्या नहीं कर रहा हूं, अपना जो सर है शार्पनर के अंदर में डालना। सर शार्पनर के अंदर में डालना इस गुरु और भक्तों के आदेशों का पालन करना और उनके संग में भगवत भक्ति करना, तो फिर हम धीरे धीरे शार्प होने लगते हैं भगवत भक्ति में, भगवान का नाम गुण रूप लीला सेवा आदि सारे कार्यों में। तो ऐसे ये कहते हैं कि मैं कभी विचलित नहीं हूं, कि मैं कभी विचलित नहीं होना चाहिए, आपका जो लगे सेवा है उससे मैं विचलित ना हूं, क्योंकि भौतिक जगत में भगवान भक्तों का संग और भक्ति से विचलित करने के लिए सारी चीजें बनाई हुई हैं। आजकल के जो मशीन है, मोबाइल्स है, इंटरनेट है, या फिर कई सारी सुविधाएं हैं, लोग हैं, माया के एजेंट तो भक्तों के बीच में भी हैं। ऐसे नहीं है कि माया बाहर है, माया हमारे साथ घूम रहे हैं। तो इसलिए बहुत सावधान होना चाहिए हमें भक्तों का संग करने के लिए भी। और तीसरी चीज कहते हैं ब्रह्मा कि मुझे क्या करो, कभी गर्व ना हो अपने जो अचीवमेंट्स है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने तो सृष्टि कर दी। हम कुछ सृष्टि नहीं करते, एक पेज लिखते नहीं तो हमें लगता है कि मैंने कितना बड़ा सृष्टि कर दिया है। हम थोड़ा सा कुछ भगवद गीता वितरित नहीं कर दे तो हमने कितना बड़ा सृष्टि किया है। नहीं, हमारे जो अचीवमेंट्स है उनके प्रति हमें तुरंत गर्व हो जाता है। यह बद्ध जीव का लक्षण है। बद्ध जीव का लक्षण क्या है, थोड़ा भी कुछ करेगा ना उससे उसकी छाती फूल जाएगी, गर्वित हो जाएगा, घमंडित हो जाएगा। इसके समझना चाहिए कि मेरी बद्धता और बढ़ते जा रही है। लेकिन यह ब्रह्मा ये तीन चीजें कह रहे हैं कि मुझे अब सामर्थ्य दो, मैं कभी आपकी सेवा से विचलित नहीं हो और मुझमें कभी गर्व ना हो। ये आइडियल प्रार्थना है भगवान ने हाथ मिलाने के बाद भगवान से उन्होंने कहा, और कहा कि आप मुझे और डिटेल आपके बारे में बताइए, विस्तार से बताइए। तो फिर वास्तव में ये जब सुना तो फिर भगवान ने बहुत गुह्य ज्ञान देना शुरू किया, और वो गुह्य ज्ञान श्रीमद् भागवतम में चतुर्श्लोकी भागवतम के रूप में हमें पढ़ने को मिलता है। और ये चतुर्श्लोकी भागवतम का ये पहला श्लोक है। भगवान ने नारद को चार श्लोकों में श्रीमद् भागवतम दिया। भगवान बोलना शुरू करते हैं 31वें श्लोक में, जिसमें भगवान कहते हैं ज्ञानम परम गुह्यम मे यद् विज्ञान समन्वितम सारहस्यं तदंगं च ग्रहानागदितामया। तो भगवान कहते कि हे ब्रह्मा तरह ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि ये जो ज्ञान है ये केवल विज्ञान नहीं है बल्कि ये रहस्यमय है। और इसी प्रकार से अर्जुन को भी कृष्ण सातवें अध्याय में कहते हैं तश्नो मया सत्त मना पार्थम युजन मदाश्रयाम असंशय समग्रमा यथा ज्ञाशेषि तश्नो। हे अर्जुन मैं बताऊंगा कि तुम अपना मन मुझमें आसक्त कैसे कर सकते हो, वो तुम्हें बताने जा रहा, और तुम ध्यान से सुनो। फिर गीता में भगवान ने तीन प्रकार के गुह्य ज्ञानों की चर्चा की भगवान, तो उसी प्रकार से यहां भी गुह्य ज्ञान बताते हैं। और भगवान आगे के ये जो चार श्लोक है उनमें सारे शास्त्रों का सार को प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि जितने वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, इतिहास है और वेदांत सूत्र है, तंत्र शास्त्र है, सात्वत संहिताएं आदि हैं, इन सब का विभाजन यदि किया जाए तो इनका तीन कैटेगरी में विभाजन होता है, जिसको चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बताया था। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि सारे शास्त्रों में तीन प्रकार के ज्ञान की चर्चा है। एक क्या है? संबंध ज्ञान। दूसरा क्या है? अभिधेय ज्ञान। और तीसरा क्या है? प्रयोजन ज्ञान। तो ये तीन प्रकार के ज्ञान को जानना परम आवश्यक है। इसलिए गौड़ीय संप्रदाय में इन तीनों के तीन आचार्य हैं और तीन के लिए तीन ग्रंथ हैं, तीन ज्ञानों के तीन विग्रह हैं। हाँ, संबंध ज्ञान के विग्रह मदन मोहन है, अभिधेय ज्ञान के विग्रह राधा गोविंद देव है, और प्रयोजन ज्ञान के विग्रह कौन है? गोपीनाथ है। हाँ, तो भगवद गीता क्या है? संबंध ज्ञान है। श्रीमद भागवतम अभिधेय ज्ञान है। हाँ, श्रीमद भागवतम में जो रास पंचाध्याय है 29, 30, 31, 32, 33 दशम स्कंध का, वो वास्तव में भागवतम का आत्मा है और वो वास्तव में क्या है? प्रयोजन है। तो जो संबंध ज्ञान के आचार्य सनातन गोस्वामी है और प्रयोजन ज्ञान के रूप गोस्वामी, अभिधेय ज्ञान के रूप गोस्वामी और प्रयोजन ज्ञान के रघुनाथ दास गोस्वामी, इस प्रकार से ये तीन प्रकार का ज्ञान परम भगवान ब्रह्मा को बता रहे हैं चार श्लोकों में। और जो श्लोक आज का जो श्लोक है 33 और 34, इन दो श्लोकों में भगवान ब्रह्मा को संबंध ज्ञान की व्याख्या कर रहे हैं। और इससे आगे जो 35वां श्लोक है उसमें प्रयोजन ज्ञान की व्याख्या करते हैं, और 36वें श्लोक में भगवान अभिधेय ज्ञान रहस्य क्या है वो 35वें श्लोक में बताते हैं। और 36 जो श्लोक है उसमें बताते हैं कि कैसे मुझे प्राप्त कर सकते हो। तो इस प्रकार से भगवान ये चार श्लोकों में श्रीमद् भागवतम बताते हैं। किनको बताते हैं? ब्रह्मा को। तो जब हम सुनते हैं कि व्यासदेव बहुत चिंतित हो गए थे, बहुत दुखी थे, परेशान थे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इतने ग्रंथ लिख दिए फिर भी दुखी है, क्या करना होगा, तो नारद जब आए तो नारद ने उनको भागवतम सुनाया था। तो नारद ने उनको चार श्लोकों में श्रीमद् भागवतम का उपदेश दिया था, नारद ने व्यास देव को, और उसी चार श्लोकों को क्या किया उन्होंने? विस्तार कर दिया। कितना? 18,000 श्लोकों में श्रीमद् भागवतम। और यही श्रीमद् भागवतम स्वर्गलोक में पढ़ा जाता है, देवताओं पढ़ते हैं, वो 1,00,000 श्लोकों का होता है। तो इस प्रकार से जो व्यास देव है उन्होंने इन्हीं चार श्लोकों की व्याख्या की, इन्हीं चार श्लोकों को विस्तार रूप से प्रकट कराया भगवान के जो दिव्य परम रहस्यमय ज्ञान को, और श्रीमद् भागवतम के रूप में सारे जगत के सामने प्रस्तुत किया। तो इस आज के श्लोक में भगवान कहते अहमेवासमेवाग्रे, कि मैं क्या हूं? सृष्टि से पहले मैं ही हूं, मैं ही था, और सृष्टि के समय भी मैं रहता हूं, और सृष्टि के बाद भी मैं ही बना रहता हूं। तो वास्तव में शास्त्रों का अध्ययन करना, शास्त्रों को समझना, मतलब कृष्ण को समझना। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानं अपोहनं च वेदेषु सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहं, कि मैं साथ सबके हृदय में निवास कर रहा हूं, और वेदों को समझना वास्तव में मुझे समझना, तत्तु समन्वयात् वेद कहते हैं। इसलिए भगवत गीता भी चार श्लोकों में है, चतुर श्लोक की भगवत गीता, वो गीता का सार है। 8वें अध्याय 10वें अध्याय का 8, 9, 10, 11 ये चार श्लोक जिसमें गीता का सार है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं। हाँ, तो वास्तव में इन सारे शास्त्रों को समझना मीन्स ये समझना कि कृष्ण परम पुरुष है, यानी कि भगवान कोई निराकार है, भगवान कोई पुरुष है नहीं, भगवान कौन है? कृष्ण है, और कृष्ण परम पुरुष है, उनका व्यक्तित्व है, उनका रूप है, उनके कार्यकलाप है, उनका धाम है। हाँ, तो ये शास्त्रों का निचोड़ है। इसलिए हर जो ग्रंथ है वो एक श्लोक में खड़ा होता है, उसको कहते हैं परिभाषा सूत्र। हर जो ग्रंथ लिखा गया है
उसका फाउंडेशन एक श्लोक होता है और उस श्लोक की व्याख्या करने के लिए वास्तव में ग्रंथ को लिखा जाता है। जैसे प्रभुपाद कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु है, उसका परिभाषा सूत्र क्या है, सूत्र का मतलब जैसे होता है ना मैथमेटिक्स में सूत्र होता है, उसके ऊपर आप विस्तार करते हो, कई सूत्रास होते हैं, तो वैसे ही शास्त्र हर ग्रंथ का एक परिभाषा सूत्र होता है, हाँ, जो उसका सार है वास्तव में, या फिर उसके आधार पर पूरे ग्रंथ की रचना की जाती है। भक्ति रसामृत सिंधु का परिभाषा सूत्र क्या है, अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृत अनुकुल्येन कृष्णानुशीलन भक्तिरुत्तम। तो पूरा भक्ति रसामृत सिंधु घूम रहा है, सारे उसके पेजेस उसके श्लोक वो इस श्लोक के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, केवल इसी चीज को स्थापित करने के लिए कि भगवान की परम भक्ति क्या है, अन्य अभिलाषताओं से शून्य। हाँ, तो ये उसका परिभाषा सूत्र है। और भगवत गीता का क्या है, सर्वधर्मा परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। पूरी भगवत गीता को समझ लिया लेकिन व्यक्ति इस श्लोक को नहीं समझ रहा है, इसके आचरण को नहीं कर रहा है, तो उसका भगवत गीता समझना क्या है, व्यर्थ है। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत गए थे श्रीरंगम में, तो चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को देखा, उस ब्राह्मण को ये उनके गुरु ने कहा था कि अब रोज भगवत गीता का अध्ययन करो, प्रभुपाद चाहते थे अध्ययन करो, तो वो ब्राह्मण पढ़ना लिखना नहीं आता था, गीता उठाता था पढ़ते रहता था, लेकिन फिर भी भगवान की शरण उसने ग्रहण की थी, ये श्लोक को वो समझ गया था, सर्वधर्मान परित्यजको, और भगवान के प्रति शरणागत हो गया था। चैतन्य महाप्रभु स्वयं उस व्यक्ति को ढूंढते हुए निकल जाते हैं, उसके पास पहुंच जाते हैं। तो उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम भी एक श्लोक पर आधारित है, और वो क्या है, एते चांश कलहा पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। इंद्रारि तो इंद्र के शत्रुओं का वध करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं, और कौन से भगवान, कृष्ण, बाकी सारे अवतार उनके अंश हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। उसी प्रकार से चैतन्य चरितामृत का भी है, श्री राधाय प्रणय महिमा की दृशोमा व्यक्ति भाव तत्वावर्ण्य समझनु सचिगर्भ सिंधु हरिंदु। तो महाप्रभु कृष्ण महाप्रभु के रूप में आते हैं तीन प्रकार की भावनाओं को समझने के लिए। तो इस श्लोक में भगवान अपनी पोजीशन बता रहे हैं, वो कहते हैं अपने बारे में बताओ जरा, तो भगवान क्लियर कर रहे हैं कि मेरे पोजीशन क्या है, अहम अहम एवासम एव अग्रे। अभी हम सबसे आगे जाना चाहते हैं अपने लाइफ में, अग्रे मैं आगे रहूंगा, मैं फ्रंट लाइनर बनूंगा, ये भावना कहाँ है, भगवान को लांगना चाहते हैं, भगवान से आगे मैं जाना चाहता हूँ। भगवान कहते अरे रुको रुको, ब्रह्मा को कहते पहले समझो, अहम एवासम एव अग्रे, तुम आगे नहीं हो, मैं आगे हूं सबसे। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान अपनी पोजीशन को क्लियर करते हैं, वो कहते हैं अहम, अहम का मतलब क्या है, पर्सन, व्यक्ति। तो भगवान व्यक्तित्व है, ये मायावादियों के सर में कीड़े पड़े हैं, वो हमेशा ये चिल्लाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, भगवान क्या है, निराकार है, निर्विशेष है, निर्गुण है, कैवल्य कैवल्य का पुतला राजेश सुकुमार, एक सॉन्ग है कैवल्य सा पुतला राजेश सुकुमार, कैवल्य का मतलब है निराकार। जब ये निराकार रूप धारण करता है तो भगवान बन जाता है, भगवान कहते मूल व्यक्ति है, अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम। गीता में कहते हैं जो व्यक्ति ये सोचते हैं कि पहले में रूपहीन था, अव्यक्त था, निराकार था, और उस निराकार ने जब रूप धारण किया तो कहते मैं बन गया, अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धया परम भाव न जानन्ति। वो कहते हैं ऐसे जो मूर्ख व्यक्ति मुझे नहीं जान पाते, तो ऐसे जो मायावादी हैं जिनको शंकरवादी कहा जाता है, प्रभुपाद कहते थे वो लोग अपने आप को वेदांति कहते हैं, प्रभुपाद कहते वो वेदांति नहीं वो वेदांति है, उनके पास दांत है ही नहीं, तो ऐसे मायावादी वो कहते हैं कि जब कृष्ण गीता में कह रहे ना मां माम एकम शरणम रज या अहम ही सर्व यज्ञानाम, तो मायावादी कहते थे जब कृष्ण कहते अहम या मां तो वो कृष्ण नहीं है। कृष्ण तो एक भौतिक व्यक्ति है, कृष्ण के अंदर एक है जो बोल रहा है, उसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। ऐसी कॉमेंट्री डॉक्टर राधा कृष्ण ने लिखी है भगवत गीता में। वो कहते हैं ये जो कृष्ण है उसके अंदर काला कोई और है, वो बोल रहा है और वो कह रहा है कि अहम, वो कह रहा है मैं हूं मां, उसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, ये कृष्ण की शरण नहीं ग्रहण करनी चाहिए। ऐसे जो मिथ्या मायावादी है इस प्रकार का वर्णन करते, कहते भगवान तो निर्गुण है। निर्गुण का मतलब वास्तव में क्या है? एक तो कहते उनमें गुण ही नहीं है, गुणहीन है। हाँ कहते ना अपानी पादो जवनो ग्रहित्वा, कहते उनके हाथ नहीं है पांव नहीं है। मायावादी ये तो कहते कि भगवान के हाथ नहीं है उनकी आंखें नहीं है, तो इनडायरेक्टली वो कह रहे भगवान अंधा है ना, भगवान के हाथ नहीं है पांव नहीं है, भगवान तो लंगड़ा है। तो इस प्रकार से मायावादी भगवान को क्या करते हैं, भगवान के प्रति अपराध करते हैं, उनके रूप को स्वीकार नहीं करते हैं, भगवान के रूप को स्वीकार नहीं करते। इसलिए शास्त्र कहते हैं माया का सबसे आखिरी फंदा कोई है तो वो यही है कि अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं भगवान हूं, भगवान का रूप नहीं है और मैं भगवान हूं। वो कहते हैं जैसे शंकराचार्य का एक स्लोगन है दासो हम नहीं सो हम, क्या है सो हम, एक मिला मायावादी को कहता है सो हम, जो वो है ना बैठा है ना वहां मैं हूं, हम सेम ही है सो हम। तो भक्त कहते हैं प्रभु जी उसके आगे ना दा लगा दो, क्या हो जाएगा दासो हम, कहते हैं नहीं दासो हम, वो फिर से कहता है सो हम लगाते हैं सो दासो हम। तो वहां ये जो मायावादी है ये केवल भगवान बनना चाहते हैं, भगवान के रूप उनके कार्यकलाप उनके लीला उनके नाम इनको स्वीकार नहीं करते। वो कहते कि ये सारे क्या है भौतिक है, इस भौतिक गुणों से संबंधित है। और इसी की शंका अर्जुन को भी आए थे गीता में, अर्जुन ने 12वें अध्याय की शुरुआत में यही पूछा एवं सतत युक्ता में, भगवान कहते जो आपका सतत भजन कर रहा है और ये जो निर्विशेष को स्वीकार करता है रूप को स्वीकार नहीं करता उनमें श्रेष्ठ कौन है? भगवान कहते जो मुझमें अपने मन को लगाते हैं मयावेश मनोये माम नित्य युक्ता उपासते हैं, मन को आवेश करता है वो वास्तव में श्रेष्ठ है। तो भगवान स्वयं ही अपने स्वरूप का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि मैं वास्तव में कौन हूँ, एक व्यक्ति हूँ और मैं इस जगत का परम कारण हूं। इसलिए भागवत में तीन तत्वों की व्याख्या की है परम सत्य की, और वो क्या है वदन्ति तत्त्व विदस्तम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, ब्रह्मा परमात्मा और भगवान, जिसकी व्याख्या भगवान श्रीमद् भागवतम में करते हैं। तो वास्तव में इन शास्त्रों का निचोड़ यही है कि भगवान को जानना, और भगवान कहते हैं अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, मैं वास्तव में सब चीजों का भोक्ता हूँ, अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो भगवान को यह स्वीकार करता है कि सारी चीजें आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत भगवान से प्रकट हुआ है। इसलिए भगवान कहते हैं वेदाहं समति तानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेदना गच्छन्। भगवान कहते हैं वेदाहं समति, वेद मतलब मैं जानता हूं भूत वर्तमान भविष्य को जानता हूं लेकिन मुझे कोई जानता नहीं है। इसलिए भगवान वास्तव में सारी चीजों को जानते क्यों, क्योंकि वो सृष्टि से पहले भी थे और सृष्टि के बाद भी भगवान बने रहेंगे। इसलिए ब्रह्मा ने ब्रह्म संहिता में सबसे पहले यही बोला ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि, जिनका आदि नहीं है और जो आदि है सबके, आदादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो इस प्रकार से ब्रह्मा भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि कृष्ण क्या है जन्मादि यश, उनसे ही सारी चीजें उद्भूत हुई हैं, उनसे ही सारी चीजें निकली हुई हैं। लेकिन ये मायावादी इस चीज को अस्वीकार करने स्वीकार नहीं करते। बल्कि शंकराचार्य जब बद्रिकाश्रम गए थे, वहां मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, जब उनको बहुत प्यास लगी या कुछ ऐसे हुआ, तो उनको समझ में आ गया कि भगवान वास्तव में निराकार नहीं है। उन्होंने तब से उसके बद्रिकाश्रम के विजिट के बाद शंकराचार्य ने भगवान के सविशेष निर्विशेष ने, विशेष का मतलब है रूप, निर्विशेष मतलब जो रूप नहीं है। तो जो बद्रिकाश्रम में वो एक शिला का पूजा करते थे, नरसिंह शिला शंकराचार्य, उस यात्रा के बाद उन्होंने कभी भी मायावाद का प्रचार नहीं किया। उसके बाद उन्होंने कोई भाष्य नहीं लिखा, उससे पहले जो लिखा था वो लिखा था, उससे ही सारा जगत अभी प्रभावित है। तो ऐसे ना जो मायावादी है वो सोचते सब एक है। एक बार प्रभुपाद वहां गए थे अमृतसर, ठंड के दिन ही थे, ऐसे जनवरी का महीना था, तो वह रात्रि में एक पंडाल प्रोग्राम था, प्रभुपाद ने पंडाल प्रोग्राम किया, लेक्चर दिया, रहने की इतनी व्यवस्था नहीं थी, उनके साथ अमेरिकन भक्तगण थे, एक भक्त के घर में रुके थे, छोटा सा घर था, तो जो माताएं हैं वो घर में रह गई और प्रभुपाद एक कमरे में रहे उन व्यक्ति के घर में, और जो बाकी भक्त थे पुरुष उनको पंडाल में जो टेंट लगा था उसमें सोना था। तो अभी वहां और भी सात लोग आते थे और वो सब मायावादी थे, सब एक है, हम भी भगवान है, तुम भी भगवान है, हम सब एक है, इस प्रकार से वो सब कह रहे थे। रात को जब ठंड लगी तो एक जो मायावादी साधु कहते कंबल चाहिए, तो वहां जो प्रभुपाद के शिष्य थे गुरुदास, उन्होंने कंबल निकाला, उन्होंने उसको कंबल में से थ्रेड निकाला, धागा, कहते ये ले लो, कहते ये भी एक है और ये भी एक है, यही ले लो, अभी गुजारा करो। एक बार भक्ति सिद्धार्थ महाराज कहां जा रहे थे, तो बहुत सारे आम थे उनके पास, एक मायावादी बैठा था, मायावादी सन्यासी या मायावादी के साथ, तो उन्होंने कहा सबसे जो खराब आम है ना उसको खिलाओ, क्योंकि सारे आम क्या है, एक ही है। तो भक्ति सिद्धार्थ महाराज बहुत आनंद अनुभव करते थे जब कोई उनका शिष्य मायावादियों को डिफीट करता था। इसलिए प्रभुपाद कहते ना कि मैं अपने गुरु के मन की बात को जान गया, क्या कि मेरे आध्यात्मिक गुरु को मायावादियों को परास्त करना बहुत अच्छा लगता था। इसलिए प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र में क्या है, निर्विशेष शून्यवादी, ये दोनों मायावादी हैं, दोनों ही नास्तिक हैं। वेदना मानिया बौद्ध है ना नास्तिक, चैतन्य चरितामृत कहते हैं जो बुद्ध है इनका सिद्धांत क्या है, नास्तिकवाद है, क्योंकि वो वेदों को स्वीकार नहीं करते। शंकराचार्य भी नास्तिक है, वेदों को मान रहे हैं लेकिन भगवान को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब वेदों की आड़ में पढ़ना, वेदों का धारण करना और नास्तिकता को स्वीकार करना, तो ये दोनों एक प्रकार से नास्तिक है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद बहुत कठोर थे इन मायावादियों के प्रति। मैक्सिमम आप तात्पर्य पढ़ेंगे भगवत गीता की, जहां थोड़ा सा कुछ आता है प्रभुपाद पूरा उनके पीछे लग जाते हैं हाथ धोकर, निर्विशेषवादी परमात्मा ब्रह्म हम भगवान षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान ये सबकी स्थापना करते हैं। तो इसलिए है भगवान का स्वयं रूप है, और भगवान कौन है, कृष्ण है, क्योंकि भगवान षड ऐश्वर्य से पूर्ण है। नारायण जो भगवान नारायण है वो तो सारे शक्तियों को कंट्रोल करते हैं, वो उनकी भगवत्ता है। और भगवान में भी हम कहते हैं कि ये साधारण डेफिनेशन है भगवान का, साधारण डेफिनेशन कि भगवान छह ऐश्वर्य से पूर्ण है, इसलिए उनको भगवान कहा जाता है। लेकिन जीव गोस्वामी कहते हैं कि वास्तव में भगवान का असली डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, कि भजनीय गुण विशिष्ट, भजनीय गुण विशिष्ट, जो भी उनके संपर्क में आता है उनका भजन किए बिना नहीं रह पाता, ये भगवान की विशेषता है, इसलिए वो भगवान है, उनका भजन उनकी सेवा में लगे बिना नहीं रह सकता, ये उनकी विशेषता है। तो इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि ऐसे जो परम भगवान कृष्ण है जिनको जानना, इस श्लोक का यही सार है कि हम ये सब जान ले कि भगवान के पहले कोई नहीं था और बाद में भी कोई नहीं था, भगवान सब कुछ है, तो इतना जानना ही इनफ नहीं है। प्रभुपाद इस तात्पर्य के आखिरी में लिखते हैं, भगवान को अपने जीवन में प्राप्त करना ये हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। जिस प्रकार से जड़ के वृक्ष के जड़ में पानी देना या पेट को भोजन खिलाना यही पूर्णता है। तो इसलिए हमें भी बहुत सारे हम श्लोक लर्न करें, सब कुछ करें, लेकिन अपने जीवन में भगवान को प्राप्त नहीं करें तो ऐसा जो कार्य है वो क्या है, मंडनम लोकरंजनम अप्राणशैव देहश्च मंडनम लोकरंजनम। मतलब ऐसा शरीर जो मरा हुआ है और उसको कपड़े पहनाते जा रहे हो, सजाते जा रहे हो, तो ये क्या है, केवल मनोरंजन है, लोकों का रंजन है। इसलिए हम भी वास्तव में मृत व्यक्ति की भांति हैं जब तक हम अपने जीवन में कृष्ण को उचित रूप से नहीं डालेंगे। और भगवान को अपने जीवन में उचित रूप से डालना मतलब भगवान जो भक्त है, गुरुगण है, शास्त्र है, उनके आदेशों के अनुसार सदैव भक्ति में उत्साहित रहना, सदैव भगवान को जानने का प्रयास करना। जितना अधिक हम लगे रहते हैं भगवान की सेवा में, उनका नाम रूप गुण लीला शास्त्रों का अध्ययन करना, भक्तों का संग करना, उतना ही अधिक हम कृष्ण को अपने जीवन में धारण करने लगते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से ये जो चतुर श्लोकी भागवतम है उसकी आज शुरुआत है। आने वाले चार श्लोक हाँ भगवान बोल रहे हैं ब्रह्मात्मा, और एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण हाँ ये जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम के। हरे कृष्णा ग्रंथा श्रीमद्भागवतम की, पतित पावन श्रील प्रभुपाद की।